SBS के सभी सुनने वालों को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। रविवार 23 जनवरी को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का रिमोट कंट्रोल द्वारा अनावरण किया। केंद्र सरकार ने पिछले साल नेताजी के जन्मदिन को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। अनावरण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी की यह प्रतिमा आने वाली और वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी।
जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए। वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय लोक प्रशासन के प्रोफेसर विनोद शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार के तहत किसी संस्था के मामले में उसे 51 लाख रुपए का नकद पुरस्कार एवं एक प्रमाण पत्र और किसी व्यक्ति के मामले में उसे 5 लाख रुपए एवं एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेताजी की प्रतिमा के अनावरण से दो दिन पहले 21 जनवरी के दिन इंडिया गेट पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति को हटाकर 400 मीटर दूर स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक की लौ में विलय कर दिया गया। अमर जवान ज्योति की स्थापना पाकिस्तान के खिलाफ 1971 का युद्ध में खेत रहे सैनिकों की याद में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1972 में की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमर जवान ज्योति के हटाए जाने पर मोदी सरकार की आलोचना की है।
देखिए, सरकार की मंशा मुझे समझ में नहीं आती। जब किसान त्रस्त है, गन्ना का इतना बकाया है, उसका दुगना आप खर्च कर रहे हो उसी पार्लियामेंट के सुंदरीकरण को जो 70 साल से बिल्कुल सही है, तो मुझे तो इनकी मंशा समझ में ही नहीं आती कि आप खर्चे इस तरह के कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के 2 हवाई जहाज हैं, वो 16,000 करोड़ के हैं, और आप किसानों का बकाया नहीं दे पा रहे हैं और उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब इनको इन चीज़ों को मुद्दा बनाना, अब ये क्यों अमर जवान ज्योति को इतने सालों बाद बुझा कर कहीं और ले जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमें तो बिल्कुल, मेरे तो समझ से बाहर है। और हमारी जो एक परंपरा है जो इतने सालों के लिए रही है कि वो ज्योति कभी नहीं बुझेगी, उसका तो सम्मान करना चाहिए।
परसों 26 जनवरी का दिन है जब हर भारतवासी बड़े उत्साह से गणतंत्र दिवस परेड का इंतजार करता है। क्योंकि इस साल भारत आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए गणतंत्र दिवस परेड भव्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट प्रदर्शन को इस साल की परेड का सबसे भव्य और ख़ास अंग माना जा रहा है। वायुसेना के प्रवक्ता विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इस रिपब्लिक डे फ्लाईपास्ट में टोटल 42 एयरक्राफ्ट होंगे, जिसमें 15 फाइटर, 5 ट्रांसपोर्ट, 17 हेलीकॉप्टर, 1 विंटेज एयरक्राफ्ट और 4 इंडियन आर्मी की तरफ से हेलीकॉप्टर देखे जाएंगे। कुछ फॉर्मेशंस जो देखे जाएंगे ये राजपथ पर पहली बार देखा जाएगा। एक फॉर्मेशन है जिसका नाम दिया गया है रुद्र फॉर्मेशन, जिसमें एक डकोटा और 2 Mi-17 एक साथ उठते हुए दिखेंगे। इसके सिवाय सुदर्शन फॉर्मेशन रहेंगे, जिसमें एक चिनूक और 2 Mi-17 रहेगा। रक्षक फॉर्मेशन रहेगा, जिसमें एक Mi-35 और 4 अपाचे एयरक्राफ्ट दिखाई देंगे आपको। गरुड़ा फॉर्मेशन नया रहेगा जिसमें एक C-17, दो MiG-29 और दो Su-30 रहेगा। एकलव्य फॉर्मेशन रहेगा जिसमें कि एक रफाल, दो जैगवार और दो MiG-29 रहेंगे। और फाइनली जो है एक रफाल ब्रह्मास्त्र फॉर्मेशन के अंडर आके डायस के सामने वर्टिकल चाली मनोवर करें।
इसके अलावा भारतीय सेनाओं ने भी परेड में कुछ खास बदलाव किए हैं, जिसकी जानकारी मेजर जनरल आलोक कक्कड़ ने दी।
सारे मार्चिंग कंटिजेंट्स 12 कॉलम और 8 रो में मार्च करते हुए नजर आएंगे। और तीसरी बात है, जैसे मैंने बताया कि परेड नेशनल स्टेडियम पर समाप्त हो जाएगी। इस परेड में इंडियन आर्म फोर्सेस के 8 मार्चिंग कंटिजेंट्स होंगे, जिसमें 6 इंडियन आर्मी के और 1 इंडियन नेवी और 1 इंडियन एयरफोर्स का होगा। इस बार आर्मी के मार्चिंग कंटिजेंट्स का मुख्य आकर्षण होगा अलग अलग दशकों में पहनी गई यूनिफॉर्म और हथियार। सबसे पहला कंटिजेंट होगा राजपूत रेजिमेंट का, जो कि 1950 के दशक की यूनिफॉर्म और .303 राइफल लेकर मार्च करेगा। इंडियन आर्मी का 6वां दस्ता होगा पैराशूट रेजिमेंट का, जो कि हाल ही में नई इंट्रोड्यूस करी गई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के साथ मार्च करेगा और उनके पास हथियार होगा टेबर राइफल।
लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से इस गणतंत्र दिवस की परेड भी अछूती नहीं रहेगी और राजपथ पर परेड का आनंद केवल 8,000 लोग ही उठा पाएंगे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,33,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान देश भर में कुल 525 लोगों की कोविड से मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 21,87,000 से ऊपर पहुंच गई है। एक्टिव मामले कुल संक्रमण का 5.57% हो गए हैं, जबकि देश में रिकवरी रेट भी अब घटकर 93.18% पर आ गया है। लेकिन इस सबसे नेताओं को क्या लेना देना, चुनावी प्रचार है कि थमने में ही नहीं आ रहा। सभी नेताओं को बिना मास्क लगाए प्रचार करते हुए देखा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना नियमों को ताक पर रख पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में घर घर प्रचार करते हुए देखे गए, जिसकी चौतरफा आलोचना भी हुई। प्रचार के बाद श्री शाह ने कैराना में प्रेस को संबोधित करते हुए पलायन का मुद्दा उठाया।
प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। यही कोरोना है, कैराना है, जहाँ पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है।
कैराना से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की साझा उम्मीदवार इकरा हसन ने इसे भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चुनावों का ध्रुवीकरण करने की साजिश बताया है।
These are baseless, factless allegations, and the Palayan issue. Even the central government has taken a stand on that, and we are all very clear about what that is. It's nothing on ground. It's just a politically motivated propaganda, which the BJP uses time and again. गुंडे कौन हैं ये सब अच्छी तरह से जानते हैं, दंगे किसने कराए ये भी सब अच्छे से जानते हैं, और लोगों को बसाने का काम किसने किया ये कैराना की जनता अच्छे से जानती है।
लंदन से अपनी PhD छोड़कर चुनाव लड़ने लौटी 28 वर्षीय इकरा वर्तमान विधायक नाहिद हसन की बहन हैं। चुनावों की घोषणा होते ही नाहिद को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। नाहिद ने ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली है। और आइए अब सुनते हैं खेल समाचार। केप टाउन के न्यूलैंड्स में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को एक रोमांचक मुकाबले में 4 रनों से हरा दिया। इस तरह 3 मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत का सुपड़ा साफ कर दिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले खेलते हुए 49.5 ओवर में 287 रन बनाए। इसके जवाब में दीपक चाहर की शानदार बल्लेबाजी के बावजूद भारतीय टीम 49.2 ओवर में 283 रनों पर ऑल आउट हो गई और मेज़बान टीम ने 4 रनों से मुकाबला जीत लिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डिकॉक ने शानदार 124 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ मनन कुमार का आप सबको नमस्कार।